ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे घर बैठे आप इस घोर अंधेरी रात से भयानक रात से कहां जाना है, सोजरे में जाना है, क्योंकि अब ये रात पूरी होती है। अब अज्ञानता की घोर अंधेरी रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। जो कहानी बाबा हमें सुना रहे हैं ये कहानी किसकी है? ब्रह्मा के बेहद के दिन और बेहद की रात की कहानी है। बेहद माना कंप्लीट, कंप्लीट माना पूरा यूनिवर्स, जो कुछ भी संसार में ब्रह्मांड में तारों में जहां भी है उसका दिन कब होता है? सतयुग त्रेता। रात कब होती है? द्वापर कल्प। यह है पूरे कल्प का दिन और रात। सतयुग त्रेता में पूरा यूनिवर्स बैलेंस्ड होता है और द्वापर कलयुग में सारा यूनिवर्स बिगड़ जाता है। प्रश्न, सिक्किम में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? दो चीजें, एक तो एक ही सेकंड के अंदर हमको जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, एक ही सेकंड में, और दूसरा अपना जीवन डायमंड जीवन बनाना है। उसका आधार क्या है, किस आधार से बनेगा? उत्तर क्या देंगे? उत्तर सच्ची गीता। झूठी गीता भी होती है? कौन सी है झूठी गीता? हाँ जी, हाँ जी, गीता की बात की है बाबा ने, सच्ची गीता। तो इसका मतलब झूठी गीता भी होती है? कौन सी है झूठी गीता? दुनिया वालों की, जिसमें कृष्ण गीता भगवानों वाच है, वो सारी की सारी झूठी गीता है। और जो शिव बाबा परम धाम से आके सुनाते हैं यह है सच्ची गीता। इस गीता को कौन सुनता है सबसे पहले?
ब्रह्मा,
मतलब श्री कृष्ण की आत्मा। श्री कृष्ण की आत्मा पहला अर्जुन है, जो इस गीता के ज्ञान को सुनकर अर्जित करके श्री कृष्ण बनती है, जो श्रीमद् भगवानों वाच है। कृष्ण भगवानों वाच नहीं, कृष्ण तो भगवान ही नहीं है, कृष्ण तो बच्चा है, वो श्रीमद् भगवान की वाच हो ही नहीं सकता। बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो अब परमात्मा आकर डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है। जो ये मुरली है ये सच्ची गीता है, ना कि वो गीता जो कृष्ण ने सुनाई या व्यास ने लिखी। इस गीता से तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। कितना समय हो गया आपको ज्ञान में आते हुए? कितना समय हो गया? 18 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल, 12 साल। मुक्ति मिली है कि नहीं मिली? जीवन मुक्ति मिली है कि नहीं मिली? तो बाबा को एक सेकंड में मिल जानी है। 18 साल में, 15 साल में, 12 साल में, 20 साल में नहीं मिली तो एक सेकंड बोलना तो झूठ हो गया ना। हाँ जी, नहीं मिली भाई, अभी लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलना है तो फिर क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमें समझने में देरी हो रही। जान तो लिया परंतु स्वीकार नहीं कर रहे।
जब तक ये शरीर में रहेंगे तब तक कोई मुक्ति नहीं। इस शरीर को छोड़नी पड़ी होगा जरूरी को छोड़ना।
देखिए इस शरीर के अंदर आप अपने कारण ही तो बंधे हुए हैं, किसी और ने तो नहीं बांध रखा ना। ऐसा नहीं होता, मतलब मोक्ष तो मिल जाए, परंतु प्रॉब्लम्स ये है कि आपने अपने कर्मों का हिसाब किताब ऐसा बना रखा है जिसके कारण हिसाब किताब बराबर किए बिना मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। परंतु बाबा ने उसकी भी युक्ति बताई है, परंतु वो युक्ति समझ में उसको आई जिसका हिसाब किताब इस प्रकार का था, बराबर कर दे। क्योंकि मेन बात होती है कि जैसे ही मैं समझ लूं कि भी मेरा जो लेना है लेगा, देना है देगा, मेरे को टेंशन नहीं लेना, ये बात मैं अपने आप को समझा दूं तो मैं तनाव मुक्त हो जाऊं, इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। जिसने दुख देना है देगा, दे ले भी, कितना देगा जितना मैंने उसको दिया, ये बात बुद्धि के अंदर अच्छी तरह समझ में आ जाए। सुख देना है दे देगा, उतना देगा जितना देना है। जिसने मेरे से सेवा लेनी है ले लेगा, क्योंकि उसने मेरे को दी हुई है। अब मुझे कोई भी काम करते हुए फिर भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बात मैंने सुन ली, जान ली, परंतु अंदर से इसे स्वीकार नहीं किया। अब ये स्वीकार करने की मेहनत तो हर आत्मा ने स्वयं पुरुषार्थ करके करनी है ना। तो ये जब वो पूरा विश्वास हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए, फिर वो परमात्मा के डायरेक्शन पर बड़ी सहज रीति से चल सकता है। तुम हीरे तुल्य बनते हो, यही जीवन है आपका हीरे जैसा, तो जिसमें आप परमात्म डायरेक्शन पर चल करके अपने एक एक दाग को, एक एक अवगुण को, एक एक गंदे संस्कार को खत्म करें, मिटाएं, हटाएं, दूर करें, तब हीरा बनता है ना। बिना तराशे तो हीरा नहीं बनेगा ना, एक एक दाग को निकालना पड़ेगा ना, बेदाग हीरा बनाना है ना। प्रश्न, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस आधार से मिलते हैं? रोज की पढ़ाई और योग से। स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं, इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल ओम शांति। अब ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, ये गीत हमारे बनाए हुए नहीं है, भक्ति मार्ग वालों के बनाए हुए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, बनवा तो दिए गीत पर तो इन बने हुए गीतों का अर्थ वो नहीं समझते। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता। अर्थ नहीं जानते तो वो अनर्थ कर देंगे, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। गाते हैं समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी किसकी श्रीमत मिली है? भगवान की। भगवान कोई भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है, भक्तों का रक्षक रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं। परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं? भगवान किससे आकर रक्षा करते हैं? जरा भी नहीं जानते, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे, भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जाने, ना जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है, रात किसको कहा जाता है। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं, यूं तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने की होती। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वे दिन रात तो कॉमन है, ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता, बेहद की रात द्वापर कलयुग, आधा आधा है, बराबर चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष, रात की आयु भी 2500 वर्ष। अब ये किसी को पता ही नहीं कि 2500 साल का दिन होता है और 2500 साल की। अब तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है फिर दिन शुरू होता है। एक रात दिन खत्म होगा, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, फिर दिन खत्म होगा, रात खत्म होगा, फिर दिन शुरू हो जाएगा। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले,
उसमें तो फिर दिन रोज नहीं होता, वो तो रात ही रहती है।
6 महीने का दिन, 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है, चंद्रमा पर 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है। उसका महीना 28 दिन का होता है, वैसे 27 दिन कुछ घंटे का होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन, ये भी कोई नहीं जानते। भगवान कोई नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जाने, कैसे जान सकते हैं। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। जिसकी हम पूजा करते हैं बाप बैठ समझ जाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने, मतलब किसी भी देवता को भगवान मान देते, कह देते हैं। और उस सबसे पहले खंडन क्या कर दिया, गीता को खंडन कर दिया। गीता को खंडन कैसे कर दिया, कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान ना कि मनुष्य। उन्होंने नाम लिख दिया कृष्ण का, कृष्ण तो मनुष्य है, वो कोई भगवान थोड़ा ही है।
गीता रामायण में तो तुलसी और तुलसीदास और वाल्मीकि है ना,
वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी
2000 साल पहले।
तुलसीदास ने रामायण लिखी 500 साल पहले। तुलसीदास ने पहला व्यक्ति था जिसने अयोध्या में रामायण रामलीला कराई, जहां ये राम मंदिर बना रहे हैं वहां पर वो रामलीला का स्थान था, जहां वो हथियार जो भी रामलीला में यूज होते थे वो रखे हुए थे। कौन सा तो वाल्मीकि तो आए अभी, अब उसी टाइम तो आए हैं तुलसीदास। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि तो भाई 2000 साल पहले हुआ था। बाकी
तो पहले भी किया था फिगर उसमें।
किसने?
वाल्मीकि ने।
नहीं मेरे भाई जी, उस टाइम जिस टाइम वाल्मीकि
व्यास ने तो लिखा था पहले।
नहीं,
तुलसी ने लिखा है प्रेजेंटली।
देखिए वाल्मीकि ने रामायण लिखी 2000 साल पहले, व्यास ने महाभारत लिखी 2000 साल पहले, तुलसीदास आया है अब जिसने रामायण लिखी अब अवधि भाषा में, ठीक है कि नहीं? तो ये जो है ना ये लिखी गई थी संस्कृत में, वाल्मीकि ने और व्यास ने महाभारत, ये दोनों किताबें संस्कृत में लिखी गई। तो हमें समझना है इस बात को कि ये जो है ना कोई हुए नहीं, ये सिर्फ कहानी लिखी, जैसे आज कोई राइटर बैठकर कोई नावल लिख देता है ऐसे ही उन्होंने भी ये नावल लिख दिया, और उसके बाद इसको पढ़ पढ़ के लोग इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना उस पर दुनिया को प्रचार हुआ कि सारे उसको सच समझकर बैठ गए, बस और कुछ नहीं।
आप भाई हर बार उसमें मुरली का जो पॉइंट आता है बोलते हो, रावण खाए नहीं, कल जो है उषा बहन, गीता बहन और ये आशा बहन, इन सबने मुरली के अंदर जो खान जो किया, कल की मुरली से पहले जो रावण जी की चर्चा की, आज बहन है उसकी मोबाइल बात दे रहे थे और उसमें ये कहा है कि रावण जैसा विद्वान नहीं, उतना कोई ज्ञानी नहीं था, उतना कोई भक्त नहीं था, उतना कोई क्रोधित नहीं था जिसने पूरी संसार को काबू में कर रखा, वो इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था। उन्हें सबने बताया रामायण से पहले दशहरे के ऊपर जो दो चार बहन बोली थी। तो और आप कहते हो
भाई जी, भाई जी बात सारी यहाँ होती है कि उसको ध्यान से सुनना हर एक का अपना पाठ है, और फिर लोगों की भावनाओं को धारित ना हो, वो दुखी ना हो, नए नए भगत बच्चे दुखी ना हो, ये उनकी भावना रही होगी। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा, परंतु सच्चाई तो यही है, नहीं सच्चाई तो यही है कि रावण कोई हुआ नहीं। बाबा मुरलियों में कितनी बार कितनी साफ साफ शब्दों में कहते हैं रावण कोई आत्मा नहीं है, रावण सिर्फ बुराइयां हैं जिनके कारण तुम्हारा जीवन दुखमय होता है।
बुराई के कारण तो उसका बताते हैं नयन होता रहता है, वो क्या गलत है, इसमें कमी क्या थी, उस कमी को हमें क्या गलत है, इसको दहन कर दिया है, तुम भी अपनी इसकी सारी जो विकार है पांच विकार है वो दहन कर दो, जरा दो इसको,
करते तो नहीं है ना।
तो रावण ने भी कहा किया था, रावण ने भी युद्ध किया है
भाई मेरे, ये सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें हैं, ऐसा कोई रावण हुआ नहीं, बाबा ने सीधे शब्दों में कह दिया, उसके बाद हमें सोचने की जरूरत ही नहीं
भाई। ठीक है सभी ने ये कहा कि
भाई सभी कोई कोई भी
उससे बड़ा कोई पंडित नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई लड़ाकू नहीं।
मेरे भाई जी, भाई जी ये बातें जो वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास की रामायण में लिखा गया कि रावण चार वेद छह शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता था, और कल ही आपने बड़ा अच्छी तरह से समझा कि ये सारे शास्त्र ये पढ़ने के लिए है ही नहीं। भाई देखिए मैं आप ये बताओ, मेरे से कुछ छोटा हो तो मैं उससे बात कर लूं, अब वो मेरे से सीनियर और मैं उनको कैसे कोई भी बात कहूं, मुझे बता दो। कभी आपका कोई कानून होता हो कि भी छोटा बड़े को ऑर्डर कर सकता हो कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, नहीं कर सकते। हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हर एक आत्मा स्वतंत्र है, जो कुछ भी जो बोलना चाहे करना चाहे वो करे। परंतु सारी बात ये ना भाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, भगवान नहीं कहेंगे। सत्युग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है कि उनमें देवी गुण हैं। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारी को देवताई गुणों वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र चार हैं, मुख्य धर्म शास्त्र चार हैं। कौन कौन से? और कोई धर्म शास्त्र है नहीं? कौन कौन से चार शास्त्र है? अच्छा, क्रिश्चियन धर्म। धर्म तो चार गिन दिए, शास्त्र बताओ। बौद्ध धर्म का है धम्मपद, अवेस्ता, सुहिफा, ठीक है, और क्रिश्चियंस का है बाइबल। मतलब जो मुख्य चार धर्म है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो गीता है, वो गीता तो वो थी जो परमात्मा ने सुनाई, वो दुनिया में किसी के पास नहीं, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। और ये जो इब्राहिम द्वारा सुहैफा लिखा गया, या बौद्ध धर्म के द्वारा धम्मपद लिखा गया, कुरान लिखी गई, बाइबल लिखे गए, ये दुनिया भर के जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, ये सब रात में लिखे गए। जो गीता परमात्मा ने सुनाई थी वो है नहीं। और इन सब धर्मों में जो 500 साल तक धर्म लिखे गए, उसके बाद 2000 साल पहले ये रामायण और महाभारत लिखे गए। बाकी धर्म तो इससे पहले आ गए थे ना। वेद पहले लिखे गए, कुरान पहले लिखी गई, बाइबल पहले लिखे गए, ये तो बाद में लिखे गए ना। तो इस प्रकार से जो भी धर्म बाद में आए, धर्म शास्त्र दुनिया भर के आज हो गए, इतने धर्म है, मनुष्य कम और धर्म ज्यादा है, तो शास्त्र भी उतने ही ज्यादा है। अगर हैं तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं। कितने धर्म पंथ मठ बने हुए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ है, बोधियों का मठ है, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वो कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत गीता, परंतु उसका एक भी अक्षर किसी को पता नहीं। वो परमात्मा सबसे बड़ी चलाकी ये करता है कि सारा सुनाकर लिखवाकर फिर उस सारे को भस्म कर देता है, सारी धरती को आग लग जाती है, उसके द्वारा जो सुनाया ज्ञान था वो भी सारा का सारा जल जाता है। परंतु आत्माओं ने जितना अपने जीवन में धारण किया, उन्होंने आकर उस स्वर्ग में प्रवेश किया। गीता माता, उनका रचयिता परम पिता परम आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा अब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। ये भी ड्रामा में एकज भूल है, ये भी ड्रामा में एकज भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वे निकलनी चाहिए, सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। ये है श्रीमत भगवानोवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज झाड़ और ड्रामा का चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि है सत, आदि सत है भी सत, ते होसी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए, बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथा है, छोटी छोटी टालियां तो अथा है। मठ पंथ बहुत है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वे किसने स्थापन किया, वे किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था। वे 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचते ऊंच पाठ किसका होगा, ऊंचते ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गई हो, अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को या और कोई को देंगे क्या? नहीं। अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते पालना करते सत्व रजो तमो में आना। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये भी तुम समझा नहीं सकते, ये भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है, कितनी गुहे बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते हैं पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते, कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख गनेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख गनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना, इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो, कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते, पढ़ाई छोड़ करके विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं, जैसे आए थे वैसे के वैसे और ही गंदे बन जाते, चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। बल वहां सुख में है परंतु पद में तो फर्क है ना, सत्युग में तो चले गए परंतु पद में तो फर्क है ना। यहां सब दुखी हैं, वहां राजा प्रजा सब सुखी हैं, फिर भी पद तो ऊंच लेना चाहिए ना, पद छोटा क्यों लिया जाए। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं, जो जमा किया वे फिर ना हो जाती है, बाकी क्या बनेंगे। स्वर्ग में भर जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वाह टेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। अभी चाहिए ना स्वर्ग का मालिक, बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं है, वो तो बात ही मत करो मेरे साथ, मैं टीचर हूं पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर कृपा आशीर्वाद करूंगा ना। तुम योग में रहो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़े गद्दी पर बैठेंगे, सबको पर मैं कृपा कर दूं सबको पास कर दूं सारे कहेंगे हम तो ऊपर वाली गद्दी पर बैठेंगे नंबर वन वाली सीट पर। एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या, तो धर्म शास्त्र मुख्य हैं ही चार, शास्त्र भी हैं चार, उनमें मुख्य है गीता, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो मात पिता से ही मिलता है। अब बाप सन्मुख समझा रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े राजाओं का राजा बन जाएंगे, बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है, अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ, अब तुम जानते हो। बाप सन्मुख आकर समझा रहे हैं एक निर्गुण संस्था भी बना दी है, निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते, शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना, आत्मा इतनी सूक्ष्म है उनका भी नाम है ब्रह्म महतत्व, जहां आत्माएं निवास करती हैं वे भी नाम है ना, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करें। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं, यहां से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए, बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं, फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज है नहीं, आज है नहीं। माया कितनी तीखी है, माया कितनी तीखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबर वार हैं, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छे सौकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे। क्योंकि जैसा कोई कर रहा है वैसा समझ में आएगा ना, ये दास दासी बनेंगे, ये तो बिल्कुल सहज समझने का है। तो पहली पहली मुख्य बात को उठाना है, बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलान चलने चाहिए। व्यंग मार्ग की सेवा क्या होती है, उड़ती कला वाले, जिनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो, कोई रुकावट ना हो, जो निरंतर जैसे पक्षी यहां से उड़ा वहां जाके बैठा, उसने जो सेवा करनी है वो सारी सेवा करनी है, उसके लिए कोई रुकावट कोई हर्डल नहीं आए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्तर नंबर एक, पढ़ाई में थकना नहीं, ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, व्यंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है, योग में रहे बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों को तीन संबंधों से पालना करते हैं, बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना, एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है बाप के साथ सर्व आत्माओं के स्नेह बनना, बाप से भी स्नेह करना और सर्व आत्माओं का भी स्नेह बनना ही सच्ची सद्भावना है। क्योंकि मेरा किसी भी आत्मा के प्रति स्नेह में कमी है तो मेरे अंदर अभी सद्भावना नहीं है। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 131-06-986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650-692270 पर केवल व्हाट्सएप करें फोन नहीं। ओम शांति।